ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 4। एषः धर्मभृतां श्रेष्ठः लोकं धर्मे अनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनां। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेनुवर्तयन्। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा अथवा सरकार के प्रधान के कर्तव्य का सुंदर वर्णन हुआ है। सरकार के प्रधान का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी लोग दृढ़ता पूर्वक धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं। राजा को नास्तिकों को दंडित करने में भी कठोर होना चाहिए। अन्य शब्दों में, राजा या सरकार के प्रधान को चाहिए कि नास्तिक या ईश्वर विहीन सरकार को प्रश्रय न दें। अच्छी सरकार की यही कसौटी है। धर्म निरपेक्ष सरकार के नाम पर राजा या सरकार का प्रधान उदासीन रहता है और लोगों को सभी प्रकार के अधार्मिक कृत्य करने की छूट देता है। ऐसे राज्य में समस्त आर्थिक विकास के बावजूद लोग सुखी नहीं रह सकते, किंतु इस कलयुग में एक भी पवित्र राजा नहीं है, अपितु चोर उचक्कों को सरकार का प्रधान चुना जाता है। भला धर्म और ईश्वर चेतना के बिना लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? ये धूर्त नागरिकों से अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए मन मना कर चूसते हैं। भविष्य में लोग इतने तंग हो उठेंगे कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वे अपने अपने घर तथा गांव छोड़कर जंगलों में जा बसेंगे। फिर भी कलयुग में कृष्ण भावना भावित लोगों के द्वारा प्रजातांत्रिक सरकार को कब्जे में किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाए तो जनता अत्यंत सुखी हो जाए। अनुवाद को दोहराइएगा। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंडदाता भी होगा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एष धर्म भृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेनुवर्तयन् गोप्ता च धर्म सेतूनां शास्ता तत् परिपंथिनां। वंदीगण सूत और मागध महाराज पृथु की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं एषः, ये महाराज पृथु जो हमारे सामने उपस्थित हैं, धर्मभृताम श्रेष्ठः। धर्मभृताम मतलब जो धर्म परायण है, जो धर्म का पालन कर रहे हैं। तो महाराज पृथु केवल धर्मभृताम या धर्म परायण नहीं है बल्कि वो धर्मभृताम श्रेष्ठ है, सारे धार्मिक लोगों में सर्वश्रेष्ठ राजा है, अर्थात वो राजर्षि हैं, राज ऋषि। अलग अलग प्रकार के ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि ब्राह्मणों में से जो ऋषि हैं, देव ऋषि देवताओं में जो ऋषि हैं, और राज ऋषि जो राजाओं में ऋषि हैं। तो तीन प्रकार के ऋषि होते हैं, ब्राह्मणों में से जो ऋषि होते हैं, देवताओं में जो ऋषि होते हैं और राजाओं में जो ऋषि होते हैं। तो इस तरह से ऋषि कोई भी व्यक्ति बन सकता है किसी भी जीवन के या समाज के क्षेत्र में, लेकिन उसके अंदर गुण होने चाहिए, धर्म परायण होना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, जो भगवान के नियमों का पालन करता है और जो ऐसी तपस्या करता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, वो ऋषि कहलाता है। तो यहां पर पृथु महाराज को धर्मभृताम श्रेष्ठः इन शब्दों से संबोधित किया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि महाराज पृथु राजर्षि हैं। वैसे तो महाराज पृथु भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन फिर भी एक राजर्षि के रूप में वो एक उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण पेश करने वाले हैं सारे समाज के सामने। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। जैसे राजा एक स्टैंडर्ड सेट करेगा, उसी प्रकार से, उसी तरह से प्रजा चलेगी। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः, सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज में, वे जैसे वो आचरण करते हैं, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरः जनः, वैसे ही जो जन साधारण है वो वैसे ही आचरण करेगी। सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, तो जिस तरह से वो उदाहरण पेश करते हैं लोगों के सामने,
वैसे ही जनसाधारण करेगी। हमें याद है बहुत साल पहले जब एक मुख्यमंत्री थे और उनको कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के कारण उनके राजनीतिक जीवन में थोड़ी कष्ट थोड़ी तकलीफ हुई थी और फिर मामला अदालत वगैरह में भी आया था, मामला काफी कुछ बढ़ गया था। और उस समय हमें याद है कि सभी लोग इस विषय के ऊपर ही बात करते थे, काफी बड़ा विषय हो गया था वो। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे मंदिर के जो फोन हैं वो ठीक से नहीं चल रहे थे, तो फोन लाइन में हमने पता कराया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और जानबूझकर कोई और कुछ और उसमें हरकत कर रहा है और शायद वो टेलीफोन वाला एक आदमी भी उसमें कुछ मिला जुला हुआ है। तो जब हमने जाके हमें पता चला और हमने जाके उससे बात की कि देखो भाई ऐसे ठीक नहीं, ये तो मंदिर का काम है और वैसे भी आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भ्रष्टाचार का काम ठीक नहीं है आपके लिए, तो कहा जब हमारा नेता ऐसे करता है तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। देखो हमारा नेता तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है, हम तो छोटे लोग हैं, हमने तो थोड़ा इधर उधर किया अपने पेट के लिए, तो उसमें हम क्या खराब करते हैं। तो आप उन लोगों को जाके क्यों नहीं कहते, उनको जाके आप लोग क्यों नहीं बताते गीता में क्या लिखा है। बात तो सही है। तो यही बात है, यथा राजा तथा प्रजा। तो अगर नेता भ्रष्टाचार में श्रेष्ठ है तो प्रजा भी सोचेगी कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। उसी तरह अगर राजा धर्म के पालन में श्रेष्ठ होगा तो प्रजा भी वैसे ही होगी। लेकिन इतना काफी नहीं है कि राजा एक आदर्श उदाहरण पेश करें। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में कितने ही सारे उदाहरण हैं ऐसे धर्म भ्रताम श्रेष्ठ राजाओं की, जो कि अच्छी तरह से धर्म का पालन स्वयं करते थे, अच्छा उदाहरण पेश करते थे समाज के सामने, लेकिन फिर भी इतना काफी नहीं हुआ, उनको और एक भी चीज करनी पड़ी। और वो क्या है, गोप्ताच धर्म सेतु नाम शास्ता तत्परिपंथी नाम, कि उनको धर्म की रक्षा करनी पड़ी और जो धर्म का के नियमों का उल्लंघन करते थे शास्ता उनको दंड देना पड़ा। तो दो चीजें होती हैं राजा के लिए, पहली बात कि स्वयं धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्म परायणों से श्रेष्ठ होना चाहिए, और दूसरी बात यह कर्तव्य बनता है राजा का कि सारे समाज में सभी लोग धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं ये देखना, और जो नहीं कर रहे हैं उनको दंड देना। धर्म का संरक्षण कैसे हो सकता है? अभी हम किसी व्यक्ति का संरक्षण कर सकते हैं, किसी चीज का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे मंदिर की रक्षा कर सकते हैं, अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, चौकीदार को लगा के ताला मार के पुलिस को खड़ा करके, लेकिन धर्म का रक्षण कैसे कर सकते हैं? धर्म का रक्षण कर सकते हैं धर्म का पालन करके। पर सबसे पहली बात हमें यह जानना है कि धर्म क्या चीज है। अगर हम ये नहीं जानेंगे कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं, धर्म के नियम क्या हैं, तो सही धर्म का पालन हम कैसे कर पाएंगे। तो धर्म के संरक्षण में पहला कदम होता है ये जानना कि धर्म क्या चीज है, सही ज्ञान होना। सही ज्ञान नहीं होगा तो संरक्षण नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर का आप संरक्षण करना चाहते हैं, जहां पे बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन चौकीदार को मालूम नहीं है कि पैसा कहां पे रखा हुआ है, तो वो सुरक्षा किसी और जगह में कर रहा है, जहां कचरे का डब्बा है उस जगह की सुरक्षा कर रहा है, और पैसे की तिजोरी जो है उस कोने में है वहां पर जहां कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, चोर आता है आराम से तिजोरी चोरी करके चले जाता है और कचरे का डब्बा सुरक्षित रहता है। तो रक्षा करने वाला होता है लेकिन किस चीज का कैसे कहां रक्षा करना चाहिए वो नहीं मालूम होगा तो फिर ठीक नहीं होगा। उसी तरह से धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान जब तक नेताओं को नहीं होगा, तब तक वो ये नहीं जानेंगे कि हमें किस चीज का आचरण करना है और किस चीज का संरक्षण करना है। इसलिए चाणक्य पंडित बताते हैं अपने अर्थशास्त्र में, जो उन्होंने दिनचर्या बनाई थी राजाओं के लिए, उसमें से कई घंटे सुबह तक वो स्वयं अपने पूजा पाठ में लगाते थे और दिन में कम से कम 4 घंटे उनको धर्म के लिए निकालने पड़ते थे। 12 बजे के पहले वो और कुछ कार्य नहीं करते थे, 12 बजे के बाद ही उनके धार्मिक उनके अर्थव्यवस्था या जो राजनीति के कार्य शुरू हो जाते थे, तब तक केवल भगवान के लिए। और उनको नींद कितनी मिलती थी? केवल 4 घंटे। ऐसा नहीं कि हमें समय नहीं मिला क्योंकि हम इतने व्यस्त थे हमारे व्यवसाय में या हमारे राजनीति के कार्य में, अर्थशास्त्र में, कि हमें भगवान के लिए समय नहीं मिला। तो देखिए, राजा का क्या कर्तव्य होता था, राजा की दिनचर्या कैसी हुआ करती थी, तो यह महत्व हुआ करता था। तो राजा भी बचपन से ही ज्ञान प्राप्त करते थे। जब वो गुरुकुल में उनको भेज दिया जाता था तो वो तो केवल राजकुमार होते थे, लेकिन वहां जब जाते थे गुरुकुल में तो कोई उनको विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। ऐसे नहीं कि ये राजपुत्र है इसलिए इन्हें सोने के लिए कोई डनलो पिलो दे दें, अच्छी गद्दी दे दें, या उनको प्रसाद में थोड़ा स्वीट राइस ज्यादा दे दें, नहीं। जैसे दूसरे थे वैसे सब समान होता था और फिर वो सब सीख जाते थे धर्म क्या चीज है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवत या महाभारत रामायण पढ़ें तो सारे पांडव हों या राजा हों, प्रभु रामचंद्र जी हों, सब अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म क्या चीज है और विवेक बुद्धि उनके अंदर थी कि क्या सही है और क्या नहीं है। और भगवत गीता में भी हम देखते हैं कि जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बात कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं और संशय को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये संशय हम लोग नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि जो संशय अर्जुन ने प्रस्तुत किए उसके लिए भी शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह के संशय अर्जुन ने प्रश्न किए वो ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है और नहीं कर सकता, और ऐसे संशयों का निवारण केवल भगवान ही कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद भगवत गीता कहलाता है, इतना हम सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से धर्मो रक्षति रक्षितः, कि धर्म का जो रक्षा की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, यह सिद्धांत है धर्म का। इसलिए जो राजा सबसे पहले यह जानेगा कि धर्म क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है, और जिस राजा ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की है गुरु से धर्म के बारे में, जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से किया, जैसे कि श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि से किया, और फिर उसके पश्चात जो राजा इस धर्म को फैलाता है सारे राज्य भर में और देखता है कि सभी लोग, सारे प्रजा धर्म का पालन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको दंड देता है, तब वास्तव में धर्म का संरक्षण होता है, और ऐसे धर्म के संरक्षण से राजा का संरक्षण होता था। जहां राजा सुरक्षित रहता है वहां प्रजा सुरक्षित रहेगी, और जहां प्रजा सुरक्षित रहती है वहां राजा सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो नियम बनाए, जो सिस्टम बनाया, जो पद्धति बनाई संसार को, समाज को चलाने के लिए, ऐसे हम अपने मनगढ़ंत ढंग से कोई प्रजातंत्रवाद या कोई साम्यवाद, कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे तो वो चलेगा नहीं। भगवान ने जो किया है वो परफेक्ट है, परिपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि भगवान परिपूर्ण है, हम लोग परिपूर्ण नहीं है। 4 त्रुटियां, 4 दोष हमारे अंदर होती हैं। जब तक ये 4 दोष हमारे अंदर हैं, हम कोई भी परिपूर्ण वस्तु नहीं बना सकते, चाहे जितने भी बुद्धि हमारे अंदर हो हम नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से भगवान ने एक पद्धति बनाई थी कि राजा को धर्म भृताम श्रेष्ठ होना चाहिए और नास्तिक लोगों को दंड देना चाहिए। इसीलिए राजा घूमते फिरते थे अपने राज्य में, कभी कभी वेश बदल के घूमते थे, कई बार, जैसे प्रभु रामचंद्र जी भी वेश बदलकर घूमते थे और उन्होंने देखा कि एक धोबी है, ये इस तरह से प्रभु राम की टीका कर रहा है। अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जो आके प्रभु रामचंद्र जी को सामने से ये बात कह देता कि एक धोबी आपके बारे में ऐसे बात करता है? सब लोग हिचकिचाएंगे। अगर जासूस भी कोई हो भगवान का तो वो हिचकिचाएगा कि मैं प्रभु के सामने जाके ये बातें कैसे कहूं। इसलिए राजा स्वयं जाया करते थे और सुनते थे कि प्रजा क्या कह रही है। प्रजा के साथ में जो है उनका संपर्क रहता था, लेकिन आजकल राजा या जो नेता होते हैं ऐसा नहीं कर सकते, करना भी चाहते नहीं है, करते हैं तो केवल इलेक्शन के समय, और वो भी आजकल चाहें भी तो नहीं कर सकते क्योंकि आजकल 10-20 उनके पीछे जो बंदूक धारण किए उनके जो रक्षक होते हैं, संरक्षक होते हैं, क्योंकि वो लोग धर्म का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, धर्म उनकी रक्षा नहीं कर रही है, इसलिए उनको सिक्योरिटी गार्ड्स की आवश्यकता होती संरक्षण करने के लिए। पहले जो धर्मपरायण राजा होते थे तो धर्म ही उनकी रक्षा कर देते थे, लेकिन जब धर्महीन हो गए हैं लोग तो धर्म उनकी रक्षा के लिए नहीं आ रही, इसलिए उनको ये सब चीजों से रक्षा कराने की आवश्यकता पड़ रही है। तो महाराज प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि ये व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि मेरे प्रजा में से लोग ऐसे कह रहे हैं मेरे बारे में, ये कैसा हो सकता है? अगर प्रजा के मन में राजा के प्रति संशय हो तो ये प्रजा का दोष नहीं है, ये राजा का दोष है। हालांकि प्रभु रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं था, सीता देवी में कोई दोष नहीं था, क्योंकि अग्नि परीक्षा हो चुकी थी और सीता देवी साक्षात लक्ष्मी देवी है तो उनमें भला क्या दोष हो सकता है। लेकिन फिर भी जब प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि प्रजा के मन में राजा और महारानी के प्रति संशय है तो उन्होंने देखा कि यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने प्रजा को दोष नहीं दिया, प्रजा को दंड नहीं दिया कि तुम हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो, उन्होंने सोचा कि मेरे में दोष है, इसलिए उन्होंने इस दोष का निवारण करने के लिए सीता देवी को भेज दिया बाहर। उसी तरह से द्वारका में भी एक ऐसी ही घटना हुई जब एक ब्राह्मण को एक छोटा बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, और वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद मर गया और वो ब्राह्मण सीधा द्वारका के राजा उग्रसेन के पास में गया और वहां टीका करने लगा राजा की कि आपने अवश्य कोई धर्म का पालन नहीं किया होगा, आपने अवश्य कोई ऐसे आपका कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया होगा क्योंकि मेरा पुत्र मेरे सामने मर गया, वो कैसे हो सकता है, मैं तो ब्राह्मण हूं, धर्म परायण हूं और मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे सामने मेरा पुत्र मर जाए। तो राजा उग्रसेन बड़े दुखी हुए कि हां ये सही बात, ये कैसे हो सकता है मेरे राज्य में। तो इसके बाद सभी ने देखा कि हम इनकी संरक्षण करेंगे, अर्जुन स्वयं आए सामने संरक्षण करने के लिए, अपने बाण वगैरह लेकर आए, लेकिन 6 पुत्र एक के बाद एक मर गए और फिर ब्राह्मण अर्जुन की भी टीका करने लगे कि आपके धनुष बाण का क्या फायदा है, किस तरह के क्षत्रिय हो, आपके धर्म का रक्षण नहीं कर रहे हैं, एक धर्म परायण ब्राह्मण के 6 बच्चे एक के बाद एक मरे जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आगे चल के हम देखते हैं कि ये तो एक लीला थी महाविष्णु जी की, क्योंकि महाविष्णु जी देखना चाहते थे अर्जुन और कृष्ण भगवान को, उनका दर्शन करना चाहते थे और वो जानते थे कि यहां उन बच्चों को लेने के लिए आएंगे वो, तो दर्शन करने के लिए एक उनका तरीका था। खैर, लेकिन बात यह है कि राजा के ऊपर कितना कर्तव्य, कितना बोझ होता है। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति दुखी हो सारे प्रजा में तो राजा समझता था कि मेरी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मेरी एक भूल हुई होगी जिसकी वजह से एक आदमी मेरे समाज में दुखी है। ये होती थी चेतना राजाओं की, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती थी। देखिए, आज के हिसाब की तुलना की जाए तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे हम। तो इस तरह से राजा घूमते फिरते थे और जानते थे कि प्रजा क्या कर रही है, और धर्म का संरक्षण करते थे प्रजा के भलाई के लिए। राजा परीक्षित भी जब इसी तरह से घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत कुरूप व्यक्ति बड़ी क्रूरता से तलवार हाथ में धारण किए हुए एक बैल को बैल के पैर काटने जा रहा है। और उस समय राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और अपने तलवार को उन्होंने बाहर लिया और तुरंत आक्रमण किया उस व्यक्ति से, जो कि व्यक्तिगत मूर्तिमान कली है, कली का स्वरूप। और उस समय मूर्तिमान कली घबरा गया और राजा परीक्षित के शरण में आ गया कि मुझे मारिए मत, मैं आपके शरण में आ रहा हूं। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि जो व्यक्ति उनके शरण में आता है उनकी हत्या नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में हम देखते हैं कि क्षत्रिय के ये सिद्धांतों को बहुत आसानी से तोड़ा जा रहा है, कोई सिद्धांत नहीं रहे। जैसे कि वो कौन राजा थे जो मोहम्मद गजनी के खिलाफ लड़ाई कर, पृथ्वीराज चौहान थे ना, पृथ्वीराज चौहान 12 बार या 11 बार उन्होंने आक्रमण की, 17 बार उन्होंने आक्रमण की और पृथ्वीराज चौहान ने उनको, चौहान ने हरा दिया, लेकिन क्षमा कर दी क्योंकि उसने शरण में आए। वो तो क्षत्रिय देह थे वास्तव में, तो छोड़ दिया, लेकिन 18वीं बार वो गजनी थे ना, यस कौन थे, मोहम्मद गजनी थे शायद, गजनवी थे, तो वो जीते और महाराज पृथ्वीराज उनके सामने आए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उनको। कहा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैंने 17 बार आपको छोड़ दिया, मैंने हराया आपको, अभी आपका कर्तव्य बनता है कि मैं जब हार गया हूं मुझे छोड़ना चाहिए, ये क्षत्रिय होता है। तो मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा, मैं आपकी तरह मूर्ख नहीं हूं, और मार दिया। तो देखिए इस समय से जो म्लेच्छ और यवन भावना से जो क्षत्रिय धर्म का भी पतन हुआ, ब्राह्मण धर्म का पतन तो होने ही लगा था कलयुग के शुरुआत से, लेकिन ये 500-400 कितने 1000 साल पहले की बात होगी, ज्यादा नहीं, क्षत्रिय धर्म का भी घटन होने लगा। कोई ये सोचता नहीं था कि कोई मेरे आश्रय में आए मैं उसको छोड़ दूं, नहीं। आजकल भी जो आतंकवाद हो रहा है, क्या हो रहा है, छुपा छुपी सब बम फेंक के भाग जाओ, तो ये सब चीजें हैं, समाज का पतन कितना हो गया है। तो महाराज परीक्षित ऐसे राजा नहीं थे, हालांकि कहीं भी अपनी जान की बाजी लगाकर धर्म का संरक्षण करने के लिए तैयार होते थे, जब देखा कि मूर्तिमान कली अपने शरण में आए हैं तो छोड़ा और कहा कि खबरदार जो तुमने बैल और गाय को छुआ, तो ये तो मूर्तिमान धर्म के स्वरूप है। तो धर्म रक्षा का मतलब यह भी है कि गो रक्षा, गाय की रक्षा करेंगे, गाय तो माता है और बैल पिता है, बैल तो धर्म के स्वरूप होते हैं, तो इस तरह क्योंकि धर्म जो पिता होता है वो सबका पालन पोषण करता है, उसी तरह से धर्म हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए बैल को पिता या धर्म का स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से महाराज परीक्षित ने कड़ा दंड दिया उस व्यक्ति को और कहा कि तुम यहां से चले जाओ ताकि तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रजा के ऊपर न पड़े। इसी तरह से राजा का कर्तव्य होता है कि सब जगह घूमे और देखे कि कौन कहां धर्म का पालन नहीं कर रहा है। धर्म निरपेक्षता का समय वो नहीं था। आजकल इस धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत स्वीकार करके सारे समाज में उत्पात फैल गया है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता के नाम में लोगों को पाप करने के लिए छूट दी जा रही है, और अगर आप उनको रोकेंगे तो कहेंगे कि यह धर्म निरपेक्षता है, हम सबको अधिकार है कि हम अपने अपने मत के अनुसार कार्य करें और सोचें, आप स्वतंत्र हैं, आपका मत है कि यह धर्म है और आप इस भगवान की पूजा करते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन जिस तरह से आपको स्वतंत्रता है इस धर्म या उस धर्म को पालन करने के लिए, मेरे अंदर यह स्वतंत्रता है, मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करूं, मैं नास्तिक बनूं, मैं ना तो इस धर्म को चाहता हूं ना उस धर्म को चाहता हूं, तो इसलिए जिस तरह आपको स्वतंत्रता है मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए मैं नास्तिकवाद का पालन करूंगा और यह मेरे लिए धर्म है, तो मेरे लिए धर्म है नास्तिकवाद। इसलिए ऐसे नास्तिकवाद के फैलाने से, इसके प्रचार से बहुत सत्यानाश हो रहा है सारे समाज में। तो नेता को चाहिए कि वो संरक्षण करे ऐसे, लेकिन ऐसा समय आजकल नहीं है। तो महाराज पृथु ऐसे नहीं थे। गोप्ताच धर्म सेतु नाम, गोप्ता मतलब संरक्षक, धर्म सेतु नाम मतलब धर्म के सिद्धांतों के, वो गोप्ता थे अर्थात संरक्षक थे। और धर्म के संरक्षण के लिए वो क्या करते थे, शास्ता तत् परिपंथी नाम, परिपंथी नाम मतलब जो पंथ, जो सारे सही पथ है धर्म का उसके विरुद्ध जो जा रहे हैं उनके लिए शास्ता दंड देने वाले। तो इस तरह से नेता को क्या होना चाहिए वो श्रीमद् भागवत से, महाभारत से और हमारे धर्म शास्त्रों से सीखना चाहिए। कम से कम भक्तों के समाज में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से हमारे नियमों का पालन करें। हमें जो नियम पालन करने के लिए बताए गए हैं भी हम उसमें थोड़ा बहुत छूट निकालने का प्रयास करते हैं, छोटा सा बहाना मिल जाए तो छूट अपने आप को दे देते हैं। तो जहां तक सारे नियम हमें बताए गए हैं उनका पालन अच्छी तरह से करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अच्छे ढंग से हम नियमों का पालन करेंगे इतने परिपूर्णता से ही ये नियम हमारी रक्षा करेंगे, हमें सुखी करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे और अंततः हमें जीवन की सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। 16 माला का जाप करना, कम से कम 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, भक्तों के संग में आकर कृष्ण कथा का श्रवण करना, भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद रूप में उसे स्वीकार करना और इस तरह से ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। ऐसे करेंगे तो फिर हम बाहर जाके धर्म की रक्षा कर सकते हैं प्रचार करके। लेकिन सबसे पहले है आचरण, आचरण होगा तो प्रचार अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए हमें देखना चाहिए कि महाराज पृथु के पद चिन्हों में चलने के लिए हम अपनी साधना अच्छे ढंग से करें, आपस में व्यवहार बड़े प्रेम से नम्रता से करें और श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनका बहुत ही ध्यान पूर्वक नित्य अध्ययन करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रील अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है, 2 शब्द उनके बारे में कहें, याद नहीं था नहीं तो आज शाम को शायद प्रोग्राम कर लेते, लेकिन याद नहीं रहा कि आज उनका आविर्भाव दिवस है। कम से कम 12 बजे तक उपवास करने का प्रयास करें सभी भक्त, और जिनको शायद मालूम ना हो उनको फोन करके बताएं कि आज 12 बजे तक कुछ ना खाएं पिएं। अद्वैत आचार्य वास्तव में महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होना था उसके पहले ही उनके सारे पार्षद आ चुके थे और उनके बाद में भी आए थोड़े पार्षद। तो अद्वैत आचार्य प्रभु काफी पहले आए चैतन्य महाप्रभु से। वो चैतन्य महाप्रभु से 30-40 सालों से बड़े थे। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो अद्वैत आचार्य प्रचार कर रहे थे वैष्णव धर्म का, और उनके घर में भागवत के पाठ हुआ करते थे, नाम संकीर्तन हुआ करते थे। उस समय वैष्णव बहुत कम थे और सारे वैष्णव नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के घर में इकट्ठे होकर नाम संकीर्तन और कृष्ण कथा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप वो भी यहां इस सत्संग में जाया करते थे, और वहां जाकर फिर उन्हें प्रेरणा मिली वैष्णव बनने के लिए और फिर आगे जाके उन्होंने संन्यास लिया। और जो सची माता है चैतन्य महाप्रभु की माता जी, उनके हृदय में हमेशा ये एक विचार था कि अद्वैत आचार्य की वजह से मेरा लड़का सन्यासी बना और घर छोड़ के मुझे छोड़ के चला गया। तो हालांकि उन्होंने एक शब्द भी कहा नहीं, लेकिन हृदय में एक चुभ रहा था, उनको चुभ रही थी बात कि मेरा लड़का अगर अद्वैत आचार्य का संग ना किया होता तो शायद मेरे साथ में रहता। हालांकि वो अद्वैत आचार्य के प्रति द्वेष नहीं करती थी, वो मानती थी इनको बहुत बड़े वैष्णव हैं, भक्त हैं, आदर भी करती थी, लेकिन हृदय में कहीं कोने में ये बात थी। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु, वो तो अंतर्यामी है, साक्षात श्री कृष्ण है, ईश्वर सर्वभूतानामृतेश अर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणियों के हृदय में रहते हैं, सची माता के हृदय में निवास करते हुए भगवान ने पता कर लिया कि इनके हृदय में अद्वैत आचार्य के प्रति क्या विचार है। तो उन्होंने एक दिन माता जी से कहा कि आप कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि आपने वैष्णव अपराध किया है। अरे मैंने क्या वैष्णव अपराध किया, मैंने तो कुछ ऐसे नहीं किया। हाँ, जब मेरे बड़े भाई विश्वरूप में संन्यास लिया तो आपने सोचा कि अद्वैत आचार्य इसके कारण है, इसलिए आपके हृदय में थोड़ा दर्द है अभी तक उनके बारे में, थोड़ी बहुत भावना गलत है। तो फिर मुझे क्या करना होगा इस अपराध से मुक्त होने के लिए? आपको उनके चरणों की धूली लेनी होगी। अरे लेकिन अद्वैत आचार्य तो कभी नहीं देंगे मुझे चरणों की धूली। और वो तो वास्तव में सत्य था, क्योंकि साक्षात भगवान की माता जो है सची माता, उनके चरणों की धूली भगवान के भक्त भला कैसे ले सकते हैं? तो इसके लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तो एक बार जब अद्वैत आचार्य प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया माता जी की, अब ले लीजिए। तो सची माता जल्दी जाके चरणों की धूली ले ली, अपने सर पे डाल दी, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा अभी आप अपराध से मुक्त हो गए हो। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पहले से ही वो भक्ति करते थे, वैष्णव थे, प्रचार भी करते थे, लेकिन सारे वैष्णव जो उनके संग में हुआ करते थे बड़े दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि सारे नवद्वीप में और सारे प्रांत में लोग इतने पतित हो गए हैं, धर्म का पालन करते हुए वो धर्म का उपयोग गलत चीजों के लिए कर रहे थे। देवी देवताओं की पूजा चल रही थी और धर्म के सिद्धांतों को निचोड़ मचोड़ के, टेढ़ा मेढ़ा करके उसे न जाने क्या बना दिया था धर्म को, और भोगवाद बहुत फैल गया था, कोई कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं ले रहा था। तो फिर उन्होंने ठान लिया कि हमें भगवान को यहां आने के लिए निवेदन करना चाहिए, भगवान ही श्री कृष्ण ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने भी अलग से भगवान के लिए के अवतार के लिए याचना की, प्रार्थना की। और इधर नवद्वीप में अद्वैत आचार्य थे, प्रतिदिन वो गंगा जी का जल, गंगा जल और तुलसी पत्ता अर्पण करते थे, और इस तरह से बहुत तीव्रता से, दीन भावना से वो प्रार्थना करते थे श्री कृष्ण से कि कृपा करके अभी आप अवतार लीजिए और इस समस्या का निवारण कीजिए, लोग बहुत पापी बने जा रहे हैं, उनको आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अद्वैत आचार्य की पुकार सुनी और चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए तो कई कारण हैं, लेकिन इसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि अद्वैत आचार्य ने उनको बुलाया और वो आए। जहां भक्त बुलाते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण वहां से दूर नहीं रह सकते, कृष्ण भगवान को वहां पहुंचना ही है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आए, और फिर जब से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति के लक्षण प्रकट किए, गया में अपने पिताजी के श्राद्ध कराने के पश्चात जहां वो ईश्वरपुरी को मिल चुके थे, तो उस समय से नवद्वीप में भक्ति का विस्फोट हो गया। जब से निमाय पंडित भक्त बने और सारे नवद्वीप के निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया कि निमाय पंडित भी भक्त बन सकता है, तो कोई भी बन सकता है। तो इस तरह से हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन का उद्घाटन चैतन्य महाप्रभु ने किया अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित इत्यादि इन भक्तों के संग में। तो अद्वैत आचार्य बड़े बुजुर्ग थे, सभी लोग उनको सम्मान करते थे। वास्तव में ये ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, ये सब गुरु भाई लगते थे। लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य कभी भी समझते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। और चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते थे कि ये तो मेरे गुरु चाचा है, इसलिए गुरु तुल्य है, इसलिए और बुजुर्ग भी हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं और भक्ति के अनुभव में भी बड़े हैं। जब से मेरा जन्म हुआ तब से ये भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव है, परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी ये पसंद नहीं करते थे कि अद्वैत आचार्य उनको अपना प्रभु माने, वो स्वयं अद्वैत आचार्य को अपना प्रभु मानते थे। तो ये थी लीला अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में। अद्वैत आचार्य रहते थे शांतिपुर गांव में, जो कि नवद्वीप के थोड़ा पास में है। और अद्वैत आचार्य के भी कितने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में। इस वक्त तो सभी लीलाओं को सुना नहीं सकते हैं, समय नहीं है। कभी और धीरे धीरे से अद्वैत आचार्य के सुंदर लीलाओं के बारे में हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इतना कहना काफी है कि अद्वैत आचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कई बार प्रसाद लेने जाया करते थे, और वहां पे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच में हंसी मजाक बहुत हुआ करती थी। एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारते थे। लेकिन ये सब महान वैष्णवों की लीला है और इसे कभी गलत नहीं समझना चाहिए। जब वो आए थे तो नित्यानंद प्रभु बैठे वहां, और जब अद्वैत आचार्य प्रसाद देने के लिए उन्होंने शुरू किया तो सब जगह थोड़ा थोड़ा चावल दिया, सब्जी दिया, और उस समय नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि अरे ये कैसे सेवा कर रहे हो वैष्णवों की, ये तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी काफी नहीं है जिसने प्रसाद पूरा ले लिया है, और ये कोई भूखे आदमी के लिए प्रसाद है। तो अद्वैत आचार्य कहने लगे कि देखो यहां जो मिलेगा सो खाना चाहिए, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फिर ठीक है अपने रास्ते चलते बनो। तो इस तरह से उनमें बातचीत चलती रहती थी और चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन करते थे। और फिर नित्यानंद प्रभु बड़े क्रोधित हुए अपने लीला में ही, और एक चावल का टुकड़ा लिया, अरे ये कोई चावल है, देखो कैसे बनाया है, और फिर जमीन पे फेंक दिया एक चावल का कण, तो जमीन को लग के वो अद्वैत आचार्य के शरीर को लग गया। और उसका स्पर्श जब हुआ, उस चावल के कण का स्पर्श जब अद्वैत आचार्य के शरीर का स्पर्श हुआ, तो उस समय अद्वैत आचार्य भाव विभोर हो गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के हाथ से स्पर्श हुआ जो चावल का कण है, वैसे भी भगवान का प्रसाद है। तो उसके स्पर्श मात्र से अद्वैत आचार्य इतने भाव विभोर हो गए कि कूदने लगे भक्ति भाव में, नाम संकीर्तन करने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहना था कि अरे ये छोड़ो, पहले खिलाओ हमको। तो इस तरह की लीलाएं जो है वो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में हुआ करती थी। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका नकल हमें नहीं करना चाहिए, ये बात है। लेकिन ये जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु हैं, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं। इसलिए केवल इन लीलाओं को पढ़ के हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और भक्ति भाव में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी नकल नहीं कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य के आविर्भाव दिवस के ऊपर हमें अद्वैत आचार्य की कृपा याचना करनी चाहिए और उनसे ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जिस तरह से उनके पुकार से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उसी तरह से हमें भी वो शक्ति दें कि हम भी भगवान को पुकारें कि हमारे हृदय में आप प्रकट होइए, हरि नाम के रूप में आप हमारे जिह्वा पे प्रकट होइए, ताकि आपके चरण कमलों के प्रति हमें शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाए और नित्य आपकी सेवा का अवसर हमें मिलता रहे। श्रील अद्वैताचार्य की, श्रील अद्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न? बिल्कुल है। शास्त्रों में किस चीज के लिए मार्गदर्शन नहीं है? ये जो तथाकथित मानवता है, ये वास्तव में अमानवता है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है उसको दंड मिलना ही चाहिए, ये राजा का कर्तव्य होता है। और अगर राजा कोई पापी को दंड नहीं देगा और ऐसे तथाकथित मानवता के नाम पर उसे छोड़ देगा तो वो पाप राजा के सर पे आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खून करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। क्यों? उसके भलाई के लिए, क्योंकि एक मृत्यु दंड से उसको ये खून के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर उसे मानवता के नाम पर उसे छोड़ दिया गया या बंदी भी कर दिया लेकिन उसे केवल जीवित रहने दिया तो क्या होगा? इस जीवन में तो बहुत भुगतेगा, साथ साथ अगले जीवन में भी, अगले जन्म में वो नरक में जाएगा, बहुत दुख सहन करना पड़ेगा उसे, क्योंकि खून करना कोई छोटा पाप नहीं है। तो बहुत उसे तड़प तड़प कर दुख भुगतना पड़ेगा भविष्य में जाकर। लेकिन अगर मृत्यु दंड दिया गया तो बस एक शॉट में पाप से मुक्त हो गया वो। तो सच्ची मानवता क्या है? उसे जल्दी से राहत देना कष्ट से, या उसे जन्म जन्मांतर तक बहुत दुख भुगतने के लिए छोड़ देना? तो लोगों को यह दृष्टि नहीं है कि अगला जन्म भी कुछ है, नरक भी कुछ है और हमारे पापों का फल हमें मिलता है। तो तथाकथित मानवता ये क्या है? शरीर के दृष्टिकोण से केवल देखते हैं, सोचते हैं कि चलो कृपा करो इसके ऊपर और इसको मृत्यु दंड मत दो। लेकिन ये कृपा नहीं, क्रूरता है उसके ऊपर। मृत्यु दंड नहीं देंगे तो हम क्रूर बन रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम इसको ऐसे सजा दे रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक उसको दुख भुगतना पड़ेगा। तो जो ऑन द स्पॉट राजा, जो उसी जगह पे उसी समय जो राजा दंड देता है शास्त्रों के हिसाब से, वो उचित है। राजा की दृष्टि से भी उचित है, उस व्यक्ति की दृष्टि से भी उचित है जिसने पाप किया है, और समाज की दृष्टि से भी उचित है। क्योंकि अगर वो छोड़ दिया गया तो बाकी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम भी ऐसे करेंगे और हमें भी छूट मिल जाएगी। तो जो दूसरे देशों में ऐसे कड़क नियमों से करते हैं वो भी सही है मनुस्मृति की दृष्टि से। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो काफी आश्चर्यचकित हम हो जाएंगे। ये हाथ काटने की बात वगैरह ये भी है मनुस्मृति में, लेकिन आजकल इसका आप बोल के भी देखिए तो देखेंगे कि आपको भगा देंगे वहां से, कोई रहेंगे नहीं। हाँ, आजकल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कठिन है करना ये। इसलिए जो दूसरे देशों में अगर ऐसे नियमों का पालन हो भी रहा है तो हम इनके इतने विरुद्ध नहीं है, लेकिन वहां रस नहीं है, केवल नियम है, वो समस्या है। भक्ति का रस नहीं है, केवल कड़क नियम, हाथ काटो पैर काटो, ये करो वो करो बस। लेकिन ऊंचा जो रस होता है जीवन का, जिससे आनंद मिल सकता है, जिसमें जीवन का परम श्रेय प्राप्त हो सकता है, वो नहीं है। तो दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की के शरीर को लग गया और उसका स्पर्श जब हुआ, उस चावल के कण का स्पर्श जब अद्वैत आचार्य के शरीर का स्पर्श हुआ, तो उस समय अद्वैत आचार्य भाव विभोर हो गए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु के हाथ से स्पर्श हुआ जो चावल का कण है, वैसे भी भगवान का प्रसाद है, तो उसके स्पर्श मात्र से अद्वैत आचार्य इतने भाव विभोर हो गए कि कूदने लगे भक्ति भाव में, नाम संकीर्तन करने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहना था कि अरे ये छोड़ो, पहले खिलाओ हमको। तो इस तरह की लीलाएं जो हैं वो अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के बीच में हुआ करती थी। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में ऐसे कई सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका नकल हमें नहीं करना चाहिए, ये बात है। लेकिन ये जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु है, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए केवल इन लीलाओं को पढ़ के हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और भक्ति भाव में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका इनकी नकल नहीं कर सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य के आविर्भाव दिवस के ऊपर हमें अद्वैत आचार्य की कृपा याचना करनी चाहिए और उनसे ये आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जिस तरह से उनके पुकार से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उसी तरह से हमें भी वो शक्ति दें कि हम भी भगवान को पुकारें कि हमारे हृदय में आप प्रकट होइए, हरि नाम के रूप में आप हमारी जिह्वा पे प्रकट होइए, ताकि आपके चरण कमलों के प्रति हमें शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाए और नित्य आपकी सेवा का अवसर हमें मिलता रहे। श्रील अद्वैताचार्य की, श्रील अद्वैताचार्य आविर्भाव दिवस की, गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न?
बिल्कुल है।
शास्त्रों में किस चीज के लिए मार्गदर्शन नहीं है? ये जो तथाकथित मानवता है, ये वास्तव में अमानवता है, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है उसको दंड मिलना ही चाहिए, ये राजा का कर्तव्य होता है। और अगर राजा कोई पापी को दंड नहीं देगा और ऐसे तथाकथित मानवता के नाम पर उसे छोड़ देगा तो वो पाप राजा के सर पे आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खून करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, क्यों? उसके भलाई के लिए, क्योंकि एक मृत्यु दंड से उसको ये खून के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर उसे मानवता के नाम पर उसे छोड़ दिया गया या बंदी भी कर दिया लेकिन उसे केवल जीवित रहने दिया तो क्या होगा? इस जीवन में तो बहुत भुगतेगा, साथ साथ अगले जीवन में भी, अगले जन्म में वो नरक में जाएगा, बहुत दुख सहन करना पड़ेगा उसे, क्योंकि खून करना कोई छोटा पाप नहीं है। तो बहुत उसे तड़प तड़प कर दुख भुगतना पड़ेगा भविष्य में जाकर। लेकिन अगर मृत्यु दंड दिया गया तो बस एक शॉट में पाप से मुक्त हो गया वो। तो सच्ची मानवता क्या है? उसे जल्दी से राहत देना कष्ट से, या उसे जन्म जन्मांतर तक बहुत दुख भुगतने के लिए छोड़ देना? तो लोगों को यह दृष्टि नहीं है कि अगला जन्म भी कुछ है, नरक भी कुछ है, और हमारे पापों का फल हमें मिलता है। तो तथाकथित मानवता ये क्या है? शरीर के दृष्टिकोण से केवल देखते हैं, सोचते हैं कि चलो कृपा करो इसके ऊपर और इसको मृत्यु दंड मत दो। लेकिन ये कृपा नहीं, क्रूरता है उसके ऊपर। मृत्यु दंड नहीं देंगे तो हम क्रूर बन रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम इसको ऐसे सजा दे रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक उसको दुख भुगतना पड़ेगा। तो जो ऑन द स्पॉट राजा, जो उसी जगह पे उसी समय जो राजा दंड देता है शास्त्रों के हिसाब से, वो उचित है राजा की।